प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधांशु कुमार पांडे। पिछले लेक्चर में हमने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन पर विचार विमर्श किया था। आज हम उनके शिक्षा दर्शन पर विमर्श करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की तत्व मीमांसा की चार प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। गुरुदेव की तत्व मीमांसा आदर्शवादी है, प्रकृतिवादी है, मानवतावादी है एवं उसमें अंतर्राष्ट्रीयतावाद भी सम्मिलित है। हमने ये जानने की कोशिश की कि उनकी ज्ञान मीमांसा सेंस ऑर्गन के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति पर बल देती है, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति पर बल देती है। उनकी आचार मीमांसा, उनकी मूल मीमांसा आत्मानुशासन, स्वतंत्रता एवं होमो मेंसुरा के सिद्धांत पर आधारित है। आज हम ये जानेंगे कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन क्या है, उनकी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, उनके एजुकेशनल आइडियाज़ एंड एजुकेशनल थॉट्स क्या हैं। जब हम गुरुदेव की राइटिंग्स को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हम पाते हैं कि गुरुदेव ने जो तत्कालीन प्रचलित शिक्षा पद्धति थी उससे अत्यधिक असंतोष जाहिर किया है अपनी राइटिंग्स में। उनका ऐसा मानना था कि एट दैट टाइम जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन थी, वो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन जो नेचुरल डेवलपमेंट है किसी चाइल्ड का, किसी बालक का जो स्वाभाविक विकास है, उसको अवरुद्ध कर देती है। उनका ये भी मानना था कि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन जो तत्कालीन प्रचलित शिक्षा थी, प्रक्रिया थी, वो एक बालक को या तो फैक्ट्री का मजदूर बना रही है या किसी दफ्तर का क्लर्क, इसके अतिरिक्त वो उसको मानव नहीं बना रही है। उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि शिक्षा प्रक्रिया द्वारा बालक को पूर्ण मानव के रूप में निर्मित करना चाहिए। जब कोई भी चाइल्ड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में इंडल्ज हो जाए, आ जाए, तो जब वो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन का एंड हो तो वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन करके निकले, ऐसा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे। वे अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में लिखते हैं कि द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट which does not merely gives us information but makes our life in harmony with all existence। यानी कि उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, केवल तथ्यों से अवगत नहीं कराती, हमें केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं देती, बल्कि जो ऑल एग्जिस्टेंस, जो सारी की सारी सृष्टि है, जो हम जिस सृष्टि के अंग हैं, इस सृष्टि में भौतिक प्रकृति सम्मिलित है, इस सृष्टि में जो पर्यावरण सम्मिलित है, इस सृष्टि में मानव सम्मिलित हैं, इस सृष्टि में उसका सामाजिक जीवन सम्मिलित है, इस सृष्टि में मानव का आध्यात्मिक जीवन सम्मिलित है, उसका आर्थिक जीवन सम्मिलित है, ये समस्त प्रकार के जो पक्ष हैं, जो डोमेन हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, जो डायमेंशंस हैं लाइफ की, इन सब से उसको अवगत कराए, इन सब की प्रैक्टिसेस उस चाइल्ड को कराए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए और उसको ही वो हाईएस्ट एजुकेशन मानते हैं। और इस संबंध में हम देखें तो हम पाते हैं कि गुरुदेव का जो दृष्टिकोण है शिक्षा के संबंध में, अत्यंत व्यापक दृष्टिकोण है। वे न केवल शिक्षा को बालक के वैयक्तिक और सामाजिक हित की दृष्टि से, बल्कि उसके शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास के दृष्टिकोण से भी अत्यंत आवश्यक मानते हैं। और वे चाहते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है वो इस तरह की हो, ऐसी हो जो विद्यार्थी को उसके जीवन की जो समस्याएं हैं, जो भविष्य में उसके जीवन में समस्याएं आने वाली हैं, जो वर्तमान की जो उसकी समस्याएं हैं उनको हल करने के योग्य बनाए। इस संदर्भ में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के जो शैक्षिक सिद्धांत उन्होंने दिए हैं वो क्या क्या हैं, जिन शैक्षिक सिद्धांतों के आधार पर उनके द्वारा दिए गए शैक्षिक विचार टिके हुए हैं, उनकी आधारशिला क्या है। तो हम जब उनकी राइटिंग्स को देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि एक प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, यानी कि एकता का सिद्धांत। अब ये एकता का सिद्धांत क्या है? गुरुदेव कहते हैं कि वास्तव में मानव जातियों में स्वाभाविक अंतर पाए जाते हैं और इन अंतरों को सुरक्षित रखना भी स्वाभाविक है, इन्हें सम्मान देना भी स्वाभाविक है, परंतु इन अंतरों के होते हुए भी शिक्षा का कार्य मनुष्यों में एकता की अनुभूति कराना है, एकत्व की अनुभूति कराना है। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि वो ड्यूअलिज्म और मोनिज्म, नॉन ड्यूअलिज्म दोनों पर चर्चा करते हैं, यानी द्वैतवाद और अद्वैतवाद पर चर्चा करते हैं, और ये मानते हैं कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद का समन्वय हो सकता है, उस पर ही आधारित है ये एकता का सिद्धांत। वो कहते हैं कि ठीक है, द्वैत है, सभी में कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ ना कुछ भिन्नताएँ हैं, परंतु इन भिन्नताओं के बावजूद भी समस्त मानव जाति में कुछ न कुछ एकत्व है, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, हर मनुष्य में मौजूद हैं, और उन जो वो जो कॉमननेस है, वो जो जनरल है, वो जो सामान्य है, उसको हमें पहचानना है, और एजुकेशन की जो प्रोसेस है वो इस सामान को इनकलकेट करे, इस जनरल आइडिया को जो ह्यूमन में मौजूद है उसको इनकलकेट करें। और अकॉर्डिंग टू गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ये जो जनरल आइडिया है, ये है मानवता, ये है मनुष्यत्व, इसीलिए वो ह्यूमनिस्ट हैं, मानवतावादी हैं। वे कहते हैं कि मानवता की पूर्णता के लिए शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षा में एकता स्थापित करने की आवश्यकता है, तभी विद्यालय इस बात को इंश्योर कर सकता है, इस बात को प्रबलता के साथ क्रियान्वित कर सकता है कि मनुष्य में मानवता, मनुष्यता का विकास होगा। दूसरा सिद्धांत उनका है, वो है स्वतंत्र विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्री डेवलपमेंट। क्या है ये? टैगोर शिक्षा में स्वतंत्रता के सिद्धांत पर अत्यधिक बल देते हैं, परंतु उनका तात्पर्य स्वतंत्रता से है, स्वेच्छाचारिता से नहीं। हम स्वतंत्र तो हैं, स्वतंत्र यानी कि हमारे ऊपर हमारा स्वयं का शासन, इसका अर्थ स्वेच्छाचारिता नहीं है कि हम जो चाहें वो कर दें, हम अपने ऊपर ही अपना शासन करेंगे, हर व्यक्ति अपना ही शासक है, अपने आप को नियंत्रित करना उसका स्वयं का कार्य है, इस सिद्धांत के वे प्रबल समर्थक हैं। वे स्वतंत्रता को आवश्यक बंधनों से युक्त मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो असीमित स्वतंत्रता होती है वह आनंद नहीं देती है, असीमित स्वतंत्रता डिस्टॉर्टेड होती है, वो मनुष्य को डिस्टॉर्ट कर देती है, वो मनुष्य को उसकी जो मनुष्यता है उससे विचलित कर देती है, इसलिए स्वतंत्रता में बंधनों की आवश्यकता भी है। और किसी भी बालक के शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए उसको अधिकतम स्वतंत्रता, यानी कि अधिकतम उसको अपने ऊपर शासन करने के योग्य बनाना चाहिए, और शिक्षा प्रक्रिया का ये कार्य है कि वह मनुष्य को अधिकतम रूप से स्वतंत्र बनाए, यानी कि वो अधिकतम रूप से उसको इस प्रकार से प्रशिक्षित करे कि वह स्वयं के ऊपर शासन कर सके, अनुशासन में स्वयं रह सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत उनकी राइटिंग्स से निकल करके आता है वह प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रिया का सिद्धांत। यद्यपि यह सिद्धांत अनेक शिक्षा शास्त्रियों द्वारा दिया गया है, क्रिया का सिद्धांत प्रयोजनवाद में भी है, क्रिया का सिद्धांत प्रकृतिवाद में रूसो के द्वारा भी दिया गया है, फ्रोबल ने भी दिया है, मरिया मॉन्टेसरी ने भी दिया है, ये इस गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर क्रिया के सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। और यही कारण है कि उन्होंने अपने जो विद्यालय उन्होंने स्थापित किया था बोलपुर में शांति निकेतन, उसमें तमाम प्रकार की क्रियाएं विद्यार्थियों के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम का अंग बनाई थी, चाहे वो संगीत हो, चाहे कला हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे शारीरिक शिक्षा हो, चाहे बागवानी हो, चाहे भ्रमण हो, चाहे पाक कला हो, गायन हो, नृत्य हो, विद्याध्ययन हो, तमाम प्रकार की क्रियाओं को उन्होंने अपने पाठ्यक्रम का अंग बना करके एक पाठ्यक्रम समेकित रूप से स्थापित किया था। उनका यह भी मानना था कि जो क्रियाओं के माध्यम से हम सीखते हैं, हम जो अधिगम करते हैं, यह चिरस्थायी होता है। ये तो एक हमारा स्वयं का अनुभव भी है कि यदि हम किसी काम में इंडल्ज हो जाते हैं, किसी कार्य को करने लगते हैं, इंडलजेंस हमारी हो जाती है, हम उसमें सनद हो जाते हैं, तो उस कार्य की बारीक से बारीक स्टेप को, चरण को भी हम स्वतः सीख जाते हैं और वह चिरस्थायी रहता है। जैसे यदि हम स्वयं कभी फ्यूज़ बनाने लग जाएं, एक आध बार करंट हो सकता है लग जाए, लेकिन जब भी हम फ्यूज़ बना लेंगे, स्वयं बना लेंगे, तो हम जब नेक्स्ट टाइम हमें फ्यूज़ बनाना होगा तो हमको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, हम उसको कर लेंगे, हम स्वयं सीख लेंगे, हमें कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमने फ्यूज़ कैसे बनाया। एक बार अगर हमने कर लिया तो फिर हम दोबारा फ्यूज़ स्वतः ही बना लेते हैं। तो क्रिया के द्वारा जो भी अधिगम होता है वह चिरस्थायी होता है। एक सिद्धांत और है जो गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर अपने एजुकेशनल थॉट्स में का आधार बनाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अनकॉन्सियसनेस ऑफ अ चाइल्ड। बालक की अचेतन मन के प्रयोग का सिद्धांत। अचेतन मन क्या है? मनोविश्लेषणवादी मन को तीन भागों में, तीन स्वरूप उसके स्वीकारते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो ये जो अचेतन है गुरुदेव के अनुसार, ये चेतन मन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है और अचेतन रूप से विद्यार्थी तमाम प्रकार की चीज़ों को, बातों को, तमाम प्रकार के अधिगम को बिना किसी प्रयास के ही सहज सीख जाता है। और ये पीढ़ियों से चलती आ रही परंपरा है। और जब हम संस्कृति को सीखते हैं तो हम यूं ही सीखते हैं। इसका एक उदाहरण लूं, हमारे घरों में जो उपासना होती है, उपासना पद्धतियां जो तमाम प्रकार की उपयोग में लाई जाती हैं, ईश्वरोपासना, हम बालक होते समय खेलते कूदते रहते हैं, आसपास मड़राते रहते हैं उपासना करने वालों के, और वो अपने उपासना करते रहते हैं। हम कभी बैठें अथवा ना बैठें, पर होते करते हम उस उपासना पद्धति को सीख जाते हैं। हम सप्रयास नहीं सीखते, हम बिना किसी प्रयास के उसे स्वतः ही सीख जाते हैं। भोजन करने के तरीके बिना किसी प्रयास के हम स्वतः सीख जाते हैं। पानी पीने के तरीके बिना किसी प्रयास के हम स्वतः सीख जाते हैं। साफ सफाई बिना किसी प्रयास के हम स्वतः सीख जाते हैं। भाषा बिना किसी प्रयास के हम स्वतः सीख जाते हैं। तो ये जो हमारा अचेतन मन है, इसका जब यूटिलाइजेशन किया जाएगा शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापकों के द्वारा, तो गुरुदेव का मानना है कि अधिगम अधिक स्थायी होगा। अगला सिद्धांत जो गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा प्रक्रिया का आधार है, वह है प्रकृति एवं सामाजिक शक्तियों के मध्य संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी बिटवीन नेचुरल एंड सोशल पावर। टैगोर कहते हैं कि विद्यार्थी की शिक्षा में प्राकृतिक और सामाजिक शक्तियों का संतुलन होना चाहिए। शिक्षा और विकास में प्राकृतिक और सामाजिक शक्तियाँ दोनों कार्य करती हैं। जब इनका संतुलन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यक्तित्व के समस्त पक्षों का पूर्ण विकास संभव है। टैगोर कहते हैं कि शिक्षा का जो प्रथम चरण है, जो शिक्षा की प्रक्रिया का प्रथम चरण है, वह प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, जबकि शिक्षा की प्रक्रिया का दूसरा चरण सामाजिक व्यवहार की शिक्षा के रूप में संपादित किया जाना चाहिए। बालक सामाजिक वातावरण में रहता है, अतः उसकी शिक्षा के कार्यक्रम में सामाजिक क्रियाएं भी अत्यधिक आवश्यक हैं। अब प्रकृति क्या है? टैगोर इसको दो रूपों में निरूपित करते हैं। एक तो व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति है, आंतरिक प्रकृति जो वस्तुतः हम हैं। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है अपनी प्रकृति के कारण, अपने नेचर के कारण। कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है जल्दी, कोई व्यक्ति हंसमुख होता है, कोई व्यक्ति संतुलित रहता है, कोई व्यक्ति चुप रहना पसंद करता है, कोई अत्यधिक वाचाल होता है, किसी को कला पसंद है, किसी को गायन पसंद है, किसी को नृत्य पसंद है, कोई संगीत की रचना करता है, कोई पाक कला में निपुण होता है, किसी को बागवानी पसंद है, कोई रंगों से खेलता है तो कोई शब्दों से खेलता है, कोई अंकों से खेलता है। तो हर व्यक्ति अपनी प्रकृति में जुदा जुदा है, अलग अलग है। यह है व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति। दूसरी, व्यक्ति के चारों ओर की बाह्य प्रकृति। अब ये चारों ओर की बाह्य प्रकृति क्या है? एक तो कॉन्शियस नेचर, जो भौतिक प्रकृति है, उसमें जो चेतनता है, बहता हुआ पानी, सरसर सर करती चलती हवा, उमड़ते घुमड़ते बादल, हैं सब भौतिक, परंतु इनमें एक चेतनता है। नीरवता यानी कि जल की आवाज़, कलरव चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, जंतु जगत, समस्त जीव जगत, चारों ओर बिखरे हुए रंग बिरंगे पुष्प, फल, वृक्ष, ये सब है बाह्य प्रकृति। और साथ ही साथ इसमें और सम्मिलित है समाज, तरह तरह के मनुष्य, तरह तरह की संस्कृतियाँ, तरह तरह के समाज, तरह तरह की मान्यताएं, क्रियाएं, वेशभूषा, खान पान, ये सब है बाह्य प्रकृति। गुरुदेव चाहते हैं कि व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पहलू और व्यक्ति की के जो बाहर की प्रकृति है, उसके सांस्कृतिक, कलात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जो भी पक्ष हैं, उनके मध्य एक समन्वय स्थापित हो। एक बात जो मैंने कही थी इसमें कि प्रारंभिक शिक्षा प्रकृति के अनुसार, देखिए जो प्रारंभिक शिक्षा हमारी होती है, जो हमारी बेसिक एजुकेशन है, जो हमको पसंद हो उस तरीके से दी जाए। सामान्यतः जो विद्यार्थियों को पसंद आता है, छोटी उम्र के होते हैं, खेल, अपने आप से मगन रह करके कुछ ना कुछ करते रहना, इस तरीके से वो शिक्षा पाना पसंद करते हैं, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। और जब बड़ी उम्र के हो जाते हैं तो भी उनकी प्रकृति जो भी चिंतनशील हो जाती है, कुछ समाज को देख करके सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, उनके उनकी जो प्रेरणा होती है वो बाह्य हो जाती है, एक्सट्रिंसिक हो जाती है, दूसरों को देख करके कि साहब फलाने ने ऐसा किया था, हम भी ऐसा करेंगे, इस तरीके से वो सीखते हैं। तो इन दोनों में समन्वय स्थापित करना चाहते हैं गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर। तदुपरांत एक सिद्धांत वो और देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। जैसा कि बताया गया कि स्वतंत्र विकास का सिद्धांत बताया गया था, प्रिंसिपल ऑफ फ्री डेवलपमेंट, तो उसी का एक भाग है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। टैगोर स्वतंत्रता के सिद्धांत के पोषक हैं, उनका अपना मानना था कि स्वतंत्रता से बालक में आत्माभिव्यक्ति और आत्मनियंत्रण की शक्ति आती है, जिसका परिणाम होता है आत्मानुशासन। जब यह सेल्फ डिसिप्लिन आता है तो एक चाइल्ड के अंदर, बालक के अंदर एक अजीब सा जो पावर होता है, ये पावर उस सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, जिन चीज़ों के द्वारा बालक के व्यक्तित्व को डिस्टॉर्टेड किया जा सकता था, वो खुद ही नियंत्रित कर लेता है। और जब ये नियंत्रण बालक अपने ऊपर करना सीख जाता है तो वो जिस भी डिज़ायर्ड डायमेंशन में अपना डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ करना चाहता है, वो उस डिज़ायर्ड डायमेंशन में, डिज़ायर्ड फील्ड में, डिज़ायर्ड डोमेन में अपनी ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट कर सकता है। गुरुदेव ने कुछ और सिद्धांत बताए हैं जिनको शिक्षण के सिद्धांत कह सकते हैं, कि शिक्षण कैसा हो। एक संक्षिप्त चर्चा इस पे भी कर लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जब शिक्षण हो तो स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से अध्यापक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करें, या शिक्षा प्रक्रिया में विद्यार्थी के साथ अध्यापक स्नेहपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करें। एक लव एंड अफेक्शन, लव एंड सिंपैथी, ये होना चाहिए विद्यार्थी के प्रति। दूसरा जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात बोली, उन्होंने कहा कि एजुकेशन बाय प्ले, एजुकेशन जो होनी चाहिए, शिक्षा जो होनी चाहिए, वो खेल के माध्यम से होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दी जाए, यानी कि जब एजुकेशन की प्रोसेस हो तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी इन्वॉल्व की जानी चाहिए जिसमें विद्यार्थी अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करें, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, मन, इनका उपयोग करें। मन को मैंने इसमें रख लिया है, खड़े इंद्रियाँ मानी जाती हैं भारतीय दर्शन में, कि ये जो 5 सेंस ऑर्गन हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनके माध्यम से जो भी हमें सेंसेशंस मिलते हैं, मन हमारा जो है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो इन सेंसेशंस को इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स और नॉलेज में कन्वर्ट करता है। तो इनको इसलिए इसको साथ में मिला लिया। अगली बात जो उन्होंने कही है कि जो टीचिंग हो वो थॉट प्रोसेस को इंड्यूस करे, विचार शक्ति को वो बढ़ाए, इंटाइज करे स्टूडेंट्स को, कि वो थिंक करें, वो सोचें, वो रीजनिंग करें, वो लॉजिक्स दें। मेयर रोट लर्निंग ना हो, लर्निंग हो बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, बाय सेल्फ एक्टिविटीज़। जब हम रीज़न करेंगे, जब हम लॉजिक्स देंगे, जब हम एक्टिव होकर के लर्निंग करेंगे, तो ये लर्निंग हमारी स्थायी लर्निंग होगी। एक और बात उन्होंने बोली कि शिक्षा का जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो हो मातृभाषा, और हो सके तो इसे कलाओं के माध्यम से सिखाया जाए। यानी कि जिस प्रकार से गांधी जी कला के माध्यम से और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया को विद्यार्थी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं, वैसे ही गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर भी मातृभाषा और कला के माध्यम से शिक्षण पर जोर देते हैं। एक और बात जो महत्वपूर्ण है और वो मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो कहते हैं कि जो शिक्षा की प्रक्रिया हो उसका केंद्र जीवन हो। हाँ, लाइफ शुड बी सेंटर ऑफ द होल एजुकेशनल प्रोसेस। एजुकेशनल प्रोसेस लाइफ का सेंटर नहीं होना चाहिए, लाइफ शुड बी द सेंटर ऑफ होल एजुकेशनल प्रोसेस। यानी कि जब शिक्षण हो तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर इस मनुष्य को, इस बालक को एक जीवन जीना है, और उस जीवन जीने के को आसान बनाने के लिए ही ये सारी बातें इसको सिखाई जा रही हैं। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात वे कहते हैं कि जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उन पे इम्फेसिस दिया जाना चाहिए, कि विद्यार्थी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के माध्यम से तमाम प्रकार के लाइफ एक्सपीरियंसेस को गेन करे। ये गुरुदेव द्वारा बताए गए शिक्षण सिद्धांत हैं जिनको एक शिक्षक द्वारा अपनाया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार जो एम्स ऑफ एजुकेशन हैं, शिक्षा के उद्देश्य हैं, वे क्या हैं। देखिए कहीं एक अलग से इनलिस्ट नहीं किया है गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कि उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, फिर भी उनकी रचनाओं में जब हम उनका अनुशीलन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हम पाते हैं कि एजुकेशन की प्रोसेस से गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर क्या पाना चाहते थे, क्या रिजल्टेंट पाना चाहते थे, और इन रिजल्टेंट जो पाना चाहते थे उसी को ही हम एम्स ऑफ एजुकेशन के तौर पर जनरलाइज कर लेते हैं। तो इसमें जो जैसे कि तमाम दार्शनिकों और दर्शनों का एक एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है और हमारी लाइफ का वो बेसिक एम है, बड़ी बेसिक नेसेसिटी है, हमारा शरीर ही जो है समस्त प्रकार के जागतिक प्रपंच को साधने का माध्यम है। यदि शरीर नहीं होगा तो सारी सृष्टि हमारे लिए नल एंड वॉइड हो जाएगी, हमारा स्वयं का शरीर ही नहीं अगर हमारा साथ देगा तो। गुरुदेव भी चाहते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है वो विद्यार्थी का उत्तम शारीरिक विकास करे, इसलिए प्रोसेस ऑफ एजुकेशन विद्यार्थी को खेल कूद, व्यायाम, पौष्टिक भोजन, शारीरिक स्वच्छता, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं की शिक्षा अवश्य दे। दूसरा जो महत्वपूर्ण है शरीर के बाद हमारा पक्ष व्यक्तित्व का, वो है हमारा मन, माइंड, हमारा मेंटल डेवलपमेंट, हमारा मानसिक विकास। तो गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित करते हैं, हमारा मानसिक विकास। क्या क्या करेंगे इसमें? रीजनिंग, लॉजिक, उसका डेवलपमेंट करना चाहिए, हमारी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, हमारी जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है वो इतनी शार्प हो कि हम इमेजिन कर सकें, अनुमान लगाने की क्षमताएं हमारे अंदर होनी चाहिए, शिक्षा की प्रक्रिया को ये सब इनकलकेट करना चाहिए। वे लिखते हैं कि देयर इज एजुकेशन इन द मेयर इफर्ट ऑफ नोइंग अ लिविंग पर्सन्स डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ थ्रू बुक्स। It not only gives some knowledge but develops the faculties of knowing to such an extent as is impossible in class lectures. All intellect, emotions or imaginations, if divorced from reality, become feeble and distorted. तात्पर्य इसका अर्थ है कि पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है। केवल कुछ ज्ञान ही नहीं प्रदान करता ये, जब किसी व्यक्ति को हम जानते हैं केवल इससे ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, वरन इससे जानने की शक्ति का भी इतना विकास हो जाता है जितना किसी कक्षा में दिए गए व्याख्यानों द्वारा भी संभव नहीं है। यदि हमारी बौद्धिक क्षमता, संवेग और कल्पना आदि को वास्तविकता से दूर रखा जाए तो वो दुर्बल और विकृत हो जाती हैं। यही कारण है कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर अपनी शिक्षा की प्रक्रिया, जो उनके द्वारा इंड्यूस्ड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, उनके द्वारा जिसका पक्ष लिया जाता है, जिसके वो पक्षधर हैं, उसमें जब मानसिक विकास करना चाहते हैं विद्यार्थी का, तो उसको पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से नहीं करना चाहते अपितु तमाम प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से करना चाहते हैं। थर्ड जो एम ऑफ एजुकेशन हम उनका डेराइव कर सकते हैं उनकी राइटिंग्स के द्वारा, वह है नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर नैतिकता को मानव जीवन का आवश्यक अंग मानते थे। वे चाहते थे कि मानव जीवन का नैतिक आधार अवश्य हो। यदि मानव जीवन का कोई नैतिक आधार नहीं होगा तो हम पशुतुल्य हो जाएंगे। उन्होंने अपनी रचना, जो उनकी साधना एक रचना है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पशु और मनुष्य में यह अंतर है कि पशु के जीवन में नैतिकता का अभाव होता है, जबकि मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं नैतिक आधार मौजूद रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नैतिक विकास का उद्देश्य लेकर के गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर चलते हैं। अपनी शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से नैतिक विकास भी विद्यार्थी का चाहते हैं। हम जैसा कि चर्चा कर चुके हैं कि टैगोर की तत्वमीमांसा आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित है, अतः शिक्षा के उद्देश्य में वो आध्यात्मिक विकास को भी सम्मिलित करते हैं। व्यक्ति की वैयक्तिकता का विकास तभी संभव होता है जब वह अपने आप को समझे कि मैं क्या हूँ, और जब वो इसको समझ सकेगा तभी वो संपूर्ण सृष्टि के सत्य को जान पाएगा। जब वो स्वयं को समझेगा तभी वो पूरी सृष्टि को जानने में सक्षम हो पाएगा। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए टैगोर आंतरिक स्वतंत्रता, इंटरनल पावर, आंतरिक शक्ति, सेल्फ डिसिप्लिन और नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, इसको वो आवश्यक बताते हैं। वो स्वयं लिखते हैं, इस चीज़ को उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा है कि टू गिव स्पिरिचुअल कल्चर टू आवर बॉयज़, यहाँ उन्होंने बॉयज़ शब्द का प्रयोग किया है, वॉज माई प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट इन स्टार्टिंग माई स्कूल एट बोलपुर। कि जब बोलपुर में मैंने विद्यालय खोला तो मेरा मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो आध्यात्मिक रूप से विकसित हो जाएं। एक अन्य बात जो उनकी राइटिंग से पता चलती है हमको, और हम उसको उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रक्रिया के उद्देश्य के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं, वह है आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन। जब आप नेचुरलिज्म को पढ़ेंगे और नेचुरलिस्ट्स को पढ़ेंगे, रूसो को पढ़ें अथवा रवीन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ें अथवा फ्रांसिस बेकन आदि को पढ़ें, तो आप पाते हैं कि इन सभी ने, हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ें, इन सभी ने सेल्फ एक्सप्रेशन को प्रोसेस ऑफ एजुकेशन का एक अल्टीमेट एम माना है। जैसे कि आदर्शवादी विचारक जो हैं वो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति को अल्टीमेट एम मानते हैं प्रोसेस ऑफ एजुकेशन का, वैसे ही सारे नेचुरलिस्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्म अभिव्यक्ति को प्रोसेस ऑफ एजुकेशन का एक अल्टीमेट एम मानते हैं, और मानते हैं कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन का एक अल्टीमेट एम हो कि विद्यार्थी अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। अपने आप को अभिव्यक्त कर सके का तात्पर्य यह है कि उसके अंदर जो छिपी हुई उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, उसकी जो इनहेरेंट पावर्स हैं, उनको वो अपने समाज के सम्मुख, अपने समुदाय के सम्मुख एक्सप्रेस कर सके। तो सेल्फ एक्सप्रेशन एक महत्वपूर्ण एम ऑफ एजुकेशन गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा प्रक्रिया में है। इसके अलावा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मस्तिष्क तथा आत्मा की स्वतंत्रता का विकास करना है। गुरुदेव ने शिक्षा का उद्देश्य बालक के मस्तिष्क तथा आत्मा को स्वतंत्र बनाना माना है। उनके अनुसार यह स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब स्वतंत्र जीवन बिताया जाए। यहाँ बार बार कहने का तात्पर्य स्वतंत्र जीवन का है कि अपने ऊपर शासन करते हुए जीवन बिताया जाए। और इस प्रकार की स्वतंत्रता कहाँ से आएगी? गुरुदेव का मानना है कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के माध्यम से ही आ सकती है। वे लिखते हैं कि आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि एक स्वतंत्र ही दूसरे स्वतंत्र के समकक्ष होता है। ईश्वर स्वयं चाहता है कि आत्मा स्वतंत्र रूप में उसके समीप आए, और इसी ध्येय से उसने हमें स्वतंत्रता और बुद्धि प्रदान की है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि, और पिछले लेक्चर में भी हमने चर्चा की थी, कि जो मनुष्य है उसको फ्रीडम ऑफ विल मिली हुई है, फ्री विल, कि वो उसको स्वतंत्र इच्छा शक्ति मिली हुई है कि वो अपनी इच्छा शक्ति से कोई भी कार्य कर संपादित करने में सक्षम है। पर इस फ्री विल का वो कैसे उपयोग करता है, उसके ही परिणाम स्वरूप उसका सामाजिक जीवन आगे बढ़ता है, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन आगे बढ़ता है। गुरुदेव ऐसा मानते हैं कि जो फ्री विल हमको ईश्वर के द्वारा दी गई है वो इसलिए ही दी गई है कि इस फ्री विल का हम उपयोग करके अपनी आत्मा को स्वतंत्र बनाएं। आत्मा को स्वतंत्र बनाने से तात्पर्य यह है कि हम ये अनावश्यक निर्लिप्तताएं जो हैं, मोह माया है, इससे इसमें इंडल्ज ना हों, बेवजह की बातों में दिमाग ना लगाएं, अपने आप को ईश्वर चिंतन, प्रकृति चिंतन और समाज चिंतन में इंडल्ज करें। एक अन्य उद्देश्य जो उनकी राइटिंग्स में हमें मिलता है वो है अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, टू डेवलप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। जो टैगोर हैं, टैगोर की अपनी एक आस्था है अंतर्राष्ट्रीय शांति में, और वे तमाम प्रकार की जो कल्चर्स हैं इस संसार में, व्याप्त कल्चर हैं, तमाम प्रकार की जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं उनके अपने अपने कल्चर हैं, उनके अपने अपने सब कल्चर्स हैं, उसको चाहते हैं कि वो कल्चरल इंटरचेंज हो। हम सभी मानव समुदाय, हम सभी मानव समाज आपस में एक दूसरे के कल्चर की अच्छी अच्छी बातों को सीखें और अपनी कल्चर में जो रूढ़िवादिता और बुरी बातें, अंधविश्वास आदि पैवस्त हो गया है, आ गया है, उसको हम धीरे धीरे करके इरेडिकेट करते जाएं। तो ये तभी संभव है जब इंटरनेशनल ब्रदरहुड, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना हम सभी के मन में होगी। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपने समकक्ष समझेगा और उसका सम्मान करेगा। और ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के माध्यम से, जहां विद्यार्थियों को ये बताया जाएगा कि ठीक है, आप अपने राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं, नागरिक हैं, परंतु अपने राष्ट्र के नागरिक होने के अतिरिक्त आप इस विश्व के भी नागरिक हैं, एक विश्व नागरिकता। तो हमारे भारत का जो एक पुराने समय से एक 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 ध्येय वाक्य रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, उसका भाव यहाँ हमको दिखाई पड़ता है गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा निर्धारित शिक्षा के इस उद्देश्य में, कि समस्त प्रकार की संस्कृतियों का समादर संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए अत्यधिक आवश्यक है। एक अन्य बात जो इसमें और अंडरलाइन की जा सकती है वो है मानवतावाद का विकास। सभी कुछ संभव है, आत्मा स्वतंत्र हो, उसका शारीरिक विकास हो, मनुष्य का उसका मानसिक विकास हो, उसका आध्यात्मिक विकास हो, नैतिक विकास हो, आत्म अभिव्यक्ति भी कर ले, अंतर्राष्ट्रीयतावाद का भी विकास हो, लेकिन सर्वाधिक आवश्यक क्या है मनुष्य में? मनुष्य में मनुष्यता का विकास करना, मनुष्य में जो पशुत्व है उसको नष्ट करना, खत्म करना, जो एक एक एनिमल है जो हमारे सबके अंदर, सभी मनुष्यों में एक एनिमल होता है, उस एनिमल को मार देना, और हमारे अंदर जो एक ह्यूमन है, जो रोतों को देख करके रोए, हंसतों को देख करके प्रसन्न हो, किसी को भूखा देख करके अपने को भी भूखा महसूस करे, अपने पास अगर कुछ संसाधन है तो दूसरों को भी उनका लाभ उठाने दे, ये जो सिंपैथी की भावना है, जो एम्पैथी की भावना है, तदानुभूति की भावना है, ये इनकल्केट करना अत्यधिक आवश्यक है। ये स्वामी विवेकानंद चाहते हैं कि मानव में सब कुछ हो परंतु मानवता का विकास अवश्य होना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म या डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक व्यू इन एवरी स्टूडेंट, ये अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा की प्रक्रिया को इसको जरूर प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार हमने आज गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का अध्ययन किया और हमने ये जाना कि उनके अनुसार जो प्रतिपादित शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति के, उस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के एम्स, जो उद्देश्य हैं, वो क्या होंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चर्चा करेंगे कि स्वामी की गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होगा, शिक्षण विधियाँ क्या होनी चाहिए, अनुशासन, शिक्षक एवं शिक्षार्थी की संकल्पना, शिक्षालय आदि की संकल्पना कैसी होगी, इस विषय पर विमर्श हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।